नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह रोक लगाने के पक्ष में है। उसने अपनी ये राय जताई है अपने बोर्ड के सामने। वहीं क्रिप्टो के रेगुलेशन के लिए एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने की बात भी की जा रही है। क्या भारत में क्रिप्टो पर पूरी तरह बैन लगाना मुमकिन है? इससे जुड़े पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अभिनंदन तुलस्यान, जो तुलस्यान पीएमएस के सीईओ और एमडी हैं। अभिनंदन जी, स्वागत है आपका। अपनी बोर्ड मीटिंग में आरबीआई ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह बैन लगा दिया जाना चाहिए। आरबीआई आखिर इतनी चिंता में क्यों है?
अखिलेश जी, इसका जवाब देने के पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दूं। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? जैसे अपनी नॉर्मल कोई भी करेंसी होती है, आप रुपी लीजिए, डॉलर लीजिए, यूरो लीजिए, ये बैक्ड बाय अ सेंट्रल बैंक होती है। तो इसका आपको इनहेरेंट वैल्यू या आपको मालूम है इसको इनहेरेंटली कौन सपोर्ट कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी होती है ब्लॉकचेन पे बनी और ये डिसेंट्रलाइज होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कितना बनेगा, कितना डिमांड सप्लाई, आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी आप देखेंगे यही कारण थे क्रिप्टो करेंसी की जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी उसके बहुत बेनिफिट्स है जो ब्लॉकचेन है, बट एज अ करेंसी ये क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा फ्लॉज है जिसकी वजह से आरबीआई कंसर्न है। सबसे पहला, बिकॉज ये डिसेंट्रलाइज है आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते। अभी आरबीआई का खाली काम पैसा सर्कुलेट करना नहीं है, दे हैव टू ट्रेस। कल बोले कुछ पीएमएलए रेगुलेशंस है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है, ऑल दिस बिकम्स वेरी इजी विद अ क्रिप्टो करेंसी। तो आरबीआई के माइंड में खाली कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है या उसका कितना डिमांड आ गया वो नहीं रहेगा। दे हैव टू कंसिडर द लार्जर पिक्चर एंड ये डिसेंट्रलाइज नेचर जो उसका स्ट्रेंथ है, आरबीआई उसको वीकनेस कैसे देख रहा है, जो सही भी है। बिकॉज एज अ रेगुलेटर अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो देश को और प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके लिए आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि हमें सारी क्रिप्टो करेंसी बैन करनी चाहिए एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। टुमारो गवर्नमेंट बोल सकती है कि हम इसको एसेट क्लास के जैसे अलाउ करें, बट दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। टू आंसर योर क्वेश्चन, द डिसेंट्रलाइज नेचर विच इज अ स्ट्रेंथ ऑफ क्रिप्टो करेंसी हैज वेरी बिग ड्रॉबैक्स जो आरबीआई को कंसर्न करी है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए आरबीआई ने ये डिसीजन पहले भी लिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया था, पर आरबीआई अपने स्टैंड पे अभी भी स्टिक है।
जी, एक जो बिल जो संसद में ये बात हुई कि पेश किया जाएगा और वैसे लग नहीं रहा कि विंटर सेशन में पेश हो पाएगा, उसके एजेंडा में कहा गया था कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर भारत में बैन लगाया जाएगा। प्राइवेट का मतलब यहाँ क्या है? प्राइवेट का मतलब,
हाँ, तो अभी इसमें जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी जैसे आपको बताया कि अंडरलाइन जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्नोलॉजी और आपको ब्लॉकचेन फ्यूचर, आपको फ्यूचर विल बी बिल्ड ऑन ब्लॉकचेन, ये दिस इज अ डन डील। तो ब्लॉकचेन जो है वो बहुत पावरफुल सिस्टम है। अभी इसमें प्राइवेट और पब्लिक जो होती है डिसेंट्रलाइज, उसमें क्या फर्क है? अभी आपने सुना होगा चाइना ने डिजिटल वन लॉन्च किया था, तो एक दूसरी हो सकती है करेंसी जो गवर्नमेंट बैक्ड हो, आरबीआई इशू करे, बोले उसको सब आप डिजिटल रूपी बुलाइए ना एक बार से गौर करिए, तो उसमें क्या होता है ट्रेसेबिलिटी एंड ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हमने जो सपोज आप बोले बिटकॉइन है, ईथर है, शिपू है, जो भी हम उसको बैन करेंगे, बट हम एक लॉन्च करेंगे विच इज अ डिजिटल करेंसी हमारे देश के नाम पे एंड उसको आप सर्क्यूलेट कीजिए। तो इसमें क्या होता है, जो ये जो कंसर्न मैंने आपको पहले पॉइंट में हाईलाइट किया था वो काफी हद तक आप टेक केयर कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ब्लॉकचेन को नहीं ब्लॉक करेगी, बैन करेगी, बट प्राइवेट जो डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है उसको बैन करेगी और एक गवर्नमेंट द्वारा या आरबीआई द्वारा जो करेंसी बनाएंगे उसको अलाउ करेंगे। दैट विल बी द लॉन्ग टर्म प्लान बेसिकली।
जी अभिनंदन जी, आरबीआई जिस तरह पूरा कंप्लीट बैन पर जोर देता हुआ आ रहा है और आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्या लगता है आपको कितना पॉसिबल है ऐसा कर पाना?
इसमें ऐसा है कि जब भी अगर आरबीआई से या गवर्नमेंट से कोई रेगुलेशन आता है, क्या होता है जब भी ग्रे एरिया थी, आपने देखा होगा कितने सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस आ गए थे डोमेस्टिकली भी इंटरनेशनली भी, तो ग्रे एरिया होते तो वो अलाउ किया था, फिर बीच में बैंकों को इनफॉर्मल बोले ना मैसेज या वो दिया था आरबीआई ने, तो उन्होंने ट्रांजेक्शन अलाउ करना बंद कर दिया था इस सब पे। तो क्या होता है, एक फॉर्मल बैन आएगा तो आप उसको जीरो नहीं कर सकते, बट आप उसको मेन स्ट्रीम से हटा सकते हैं, विच इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। अभी आप बोले कि सपोज बोले कोई स्टेट पर कोई कमोडिटी बैंड है या और कुछ है, तो आपको मालूम है उसमें इल्लीगल ट्रेड हो सकता है, बट इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड नॉर्म टू डू इट। तो अगर बैन आता है, इट विल बी हेल्पफुल इन रिमूविंग बल्क ऑफ इट फ्रॉम द मार्केट, विच विल सर्व द पर्पज ऑफ द आरबीआई। तो बैन विल बी इफेक्टिव एज अ करेंसी, बिकॉज फिर बैंकों को बाकी सबको ऑब्लिगेशन होगा कि हम इसमें ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं करें।
जी, लेकिन कई जो क्रिप्टो एक्सचेंज विदेश में है, क्या वहां तक ये बात पहुंच पाएगी? हमारे यहाँ अपने यहाँ बैन लग जाए तो लोग विदेश में तो ट्रेड कर ही सकते हैं, फिर कैसे?
इसमें जी 100% कर सकते हैं, आपने सही बोला कि आप दूसरी जगह कर सकते हैं, बट देन सी आप अभी सब आपने बोला अभी किसके पास, इन्वेस्टर के पास बोले उसके पास ढाई लाख डॉलर वो आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको रेगुलेट कर सकते हैं। कल मानिए कल गवर्नमेंट बोले कि अच्छा बहुत इन्वेस्टर बाहर में शिफ्ट हो गए, तो अगर गवर्नमेंट को फिर भी अपना स्टैंड लगे कि नहीं ये बैन इज अ करेक्ट स्टैंड, कल आप बोले आपका इनकम टैक्स डिक्लेयर होना चाहिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या होगा, यू कैनॉट हाइड फ्रॉम इट, आप उससे भाग नहीं पाएंगे, आप बोलेंगे मैंने पैसा ट्रांसफर किया फॉरेन में, मेरा डॉलर में है या जिसमें भी है, आपको उसके अपने एसेट में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट चाहे गवर्नमेंट उसको इतना मुश्किल बना देगी साधारण इन्वेस्टर के लिए कि वो नहीं करेगा। अब आप बोले गिने चुने इन्वेस्टर जो एकदम ही डिटर्मिंड है करने के लिए वो कर सकते हैं, बट जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि वो मेन स्ट्रीम से हट जाएगा, विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर, तो वो अचीव करना फिर भी पॉसिबल है by linking it to your some IT return or some other document which the government will have access to।
जी अपने यहाँ जो KYC वगैरह के जो नियम है अभी यहाँ जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें तो इन चीजों का पालन किया जा रहा है, देश में जो एक्सचेंज है वहां पर जो बिकवाली कर रहा है उधर से, अगर उसको भी KYC के दायरे में लिया जा सकता हो, क्या ऐसा गुंजाइश ऐसी है कि ऐसा किया जा सकता है?
वो अखिलेश जी वो क्या होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। आप जो रेगुलेशन आप दूसरे पे अभी आपने देखा होगा, इनकम टैक्स बोलिए या आप और कोई बोलिए, कभी भी सारे देशों को या सारे रेगुलेटर्स को एक 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 ही टेबल पे लाके एक ही चीज पे अग्री कराना बहुत मुश्किल होता है। तो आप बोलो कि नहीं मैं किससे ट्रेड किया, मैं सामने वाले पे एनफोर्स कराऊ, वो बहुत अनलाइकली है, इसीलिए गवर्नमेंट ये स्टैंड ले रही है। अगर गवर्नमेंट वो ट्रेसेबिलिटी और सामने वाले का वेरिफिकेशन कर सकती तो शायद गवर्नमेंट का एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना पड़ता। तो बिकॉज दैट वो आपने देखा है कि इनकम टैक्स का आप सुनते हैं इतना होता है, यू नो ये सब प्लानिंग जो सब बोले फॉरेन में कंपनियां खोल के आप उसके थ्रू राउट करके करते हो, तो वो रेगुलेशंस करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए गवर्नमेंट एंड RBI ने बोला है कि हमें यहां पर बैन करना पड़ेगा, एंड यहां पर हम बैन करेंगे तो इट विल टेक केयर ऑफ मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। एंड कहीं ना कहीं आप देखें तो गवर्नमेंट का इंटेंट इज टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर एज वेल। आपने क्रिप्टो करेंसी देखा होगा, आप और कोई करेंसी देखेंगे, अपना रूपी देखेंगे या और कोई देखेंगे, देर इज वेरी लिटिल वॉलिटिलिटी जो बोलते हैं, बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में एक अनाउंसमेंट आता है वो 15% दिन में बढ़ जाएगा, अगले दिन 20% गिर जाएगा, ऐसा फ्लक्चुएशन होता है, विच इज नॉट गुड फॉर अ करेंसी। हो सकता है वो 5 साल बाद 10 साल बाद वो वॉलिटिलिटी कम हो जाए, बट आज के दिन इट इज नॉट गुड फॉर एन इन्वेस्टर, इट इज वेरी गुड फॉर अ स्पेक्युलेटर। बट अगेन गवर्नमेंट का काम स्पेक्युलेशन को बढ़ावा देना नहीं है, उनका काम है कि अगर कोई इसको इन्वेस्टमेंट कैसे करे तो वो शायद गवर्नमेंट इसको एसेट क्लास कैसे अलाउ करे, बट नॉट एज अ करेंसी।
जी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अभिनंदन जी, गीता गोपीनाथ, वो कह रही हैं कि क्रिप्टो पर पूरी तरह बैन लगाने के बजाय बेहतर ये होगा कि इसे कुछ नियम बनाए जाए, रेगुलेट किया जाए, क्योंकि जो क्रॉस बॉर्डर इसका नेचर है उसको हैंडल कर पाना, उसको रेस्ट्रिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, तो कुछ बैन लगाने के बजाय रेगुलेट किया जाए। किस तरह के रेगुलेशन की जरूरत आप देख रहे हैं, कैसे हो सकता है ये?
जी जो मैंने जैसा आपको बताया कि अभी क्या सपोज आपने कोई क्रिप्टो एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो एक्सचेंज बाहर का बेस आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते कि इंडियन गवर्नमेंट या RBI नहीं बोल सकती उनको कि मेरे को सामने वाले पार्टी का कुछ बताइए या उसमें आप ये लिमिट्स एनफोर्स करिए, वो आप नहीं दे सकते। तो द ओनली थिंग दैट यू कैन कंट्रोल एज अ रेगुलेटर इज क्या बोले मेरे यहाँ पर मेरे ज्यूरिसडिक्शन में जो यूजर या कस्टमर या लोग आते हैं मैं उनको रेगुलेट करूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट अपना जहां तक उसका पावर सीमित है वो बोले मैं वहां तक एक्ट करूँ। जो अगर सारी कंट्री कल बोले कि हम लोग साथ में बैठ के कॉमन रेगुलेशन बनाएंगे देन इट इज पॉसिबल, बट वो आपने देखा इतिहास में कभी हुआ नहीं है कि कोई चीज में सारी कंट्रीज अग्री करके वो प्रोसीड कर पाए। तो इसीलिए आज के दिन टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज गवर्नमेंट ने ये RBI ने डिसीजन लिया था जो 2018 में भी और अभी भी उस पर कायम है कि हमें ये पूरा बैन करना है। दैट इज अ प्राइमरी रीजन।
जी अभिनंदन जी, अभी मतलब क्रिप्टो करेंसी को अगर करेंसी के रूप में मान्यता नहीं दी जाए क्योंकि इससे कुछ जो है दिक्कतें दूसरी तरह की फाइनेंशियल पैदा हो सकती हैं, एसेट के रूप में अगर मान्यता मिल जाए तो भी क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी?
एसेट के रूप में अगर आप करते हैं तो जो कठिनाई अपन ने बात की वो काफी कम हो जाती है, बट उसमें खाली एक सवाल उठता है कि नॉर्मली आप इट वो क्या बोलते हैं स्पेक्युलेटिव एसेट रहेगा। जैसे अभी आप बोलते हैं कि मेरे पास FD है, गोल्ड है, शेयर है, रियल एस्टेट है, उसके बाद आपके पास एक बैकिंग है, आपके पास कोई अंडरलाइंग एसेट है, तो ये हो जाएगा जैसे आप बोले शेयर मार्केट की भाषा में बोले तो ये बोला खाली F&O हो गया कि, और F&O में भी क्या होता है कि आपको मालूम है कि अंडरलाइंग एक स्टॉक है जिसका एक अंडरलाइंग है, एक क्रिप्टो करेंसी में कोई भी अंडरलाइन नहीं होता है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अभी आप देखेंगे, अभी आप सबको सबको टॉप 5, 4, 6, 10 क्रिप्टो करेंसी सबको पता है, बट अगर आप टोटल में देखें 10,000 से ऊपर क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट होती है आज के दिन मार्केट में। तो ये क्रिप्टो करेंसी ऐसी ही चीज है जो कभी बन जाती है, कभी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टर बोलो या आपके रेजिडेंट्स बोले या सिटीजन बोले, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो एसेट क्लास के जैसे आप टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, बट एज अ करेंसी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए जब आप ये सब डिस्कशन देखेंगे, इट इज बैनिंग इट एज अ करेंसी, नॉट नेसेसरली एज अ एसेट क्लास।
जी, जो पूरी तरह कंप्लीट बैन लगाने की जो बात है, जो बार बार की जा रही है, और आरबीआई भी कह रहा है, अभिनंदन जी, और आप भी इसके फेवर में हैं। अपने यहाँ तमाम स्टार्टअप्स हैं जो इस की टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, बहुत लोगों ने पैसे लगाए हुए हैं, तो पूरी तरह बैन लगाना ठीक होगा, क्या लगता है आपको?
सी अखिलेश जी, ये सवाल है जो हर सब कोई भी ग्रे एरिया की फील्ड होती है। अभी बोले आप फॉरेन में देखेंगे, बोले काफी ड्रग्स को किसने लीगलाइज किया है, किसने उसको टैक्स रेवेन्यू देखा है, किसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो ये तो ऐसा है कि अभी आज बोले एक्स लोग इसमें लगे हुए हैं, बट अगर आपने इसको आज कंट्रोल नहीं किया या आपने इसको आज उसका पाथ नहीं बनाया फ्यूचर का, वो नंबर 10x हो सकता है, 100x हो सकता है। तो वो एक्स को पेन होगा, बट इफ इट इज अ राइट थिंग टू डू एंड आपका नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, तो दैट पेन विल हैव टू बी टेकन बाय दोस एक्स इन्वेस्टर। बिकॉज जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने पहले बोला था लीगल है आप इन्वेस्ट करिए और अभी गवर्नमेंट बोली इलीगल है। इट वॉज ऑलवेज इन द ग्रे एरिया। तो जिन्होंने इन्वेस्ट भी किया उनको मालूम है कि ये स्पेक्यूलेटिव था, उन्होंने स्पेक्यूलेटिव गेन के लिए, बिकॉज आपने देखा ही होगा बिटकॉइन का एंड ऑल, सबने बोला अरे 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना हो गए ये कॉइन्स, तो इसीलिए सब लोग उसमें अट्रैक्ट हुए थे, तो वो उनको फैंसी लगा था। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड रिवर्स किया है या बैक ट्रैक किया है। इट वॉज ऑलवेज नोन कि ये ग्रे एरिया में आता है एंड इसमें कभी ग्रीन सिग्नल दिया नहीं था, तो दैट वॉज अ रिस्क टेकन बाय द इन्वेस्टर और द पर्सन हु वॉज बाइंग द क्रिप्टो करेंसी एंड दे विल हैव टू बाइट द बुलेट, जैसे बोलते हैं ना, वो करना पड़ेगा इसमें, दैट इज द ओनली वे आउट।
जी, तो जो ये ट्रेडिंग है, ये अगर बैन लगा दिया गया तो लोग ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब विदेशी एक्सचेंजों पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो अपने यहाँ मतलब वो जो एक ग्रोइंग चीज, एक चीज उभर रही है, वो हम बाहर से एकदम कट जाएंगे, बिल्कुल ऐसा होगा फिर?
तो इसमें जैसे वही, जिसमें आपको चाइना का एग्जांपल दिया, चाइना ने बोला कि हमने हमारा डिजिटल युआन लॉन्च किया है, उन्होंने ऑलरेडी उनका पायलट हो गया था, उन लोग उसको प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको जैसे बताया, जो ब्लॉकचेन जो है, इसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी वो बहुत पावरफुल है, मतलब उसमें आप मतलब उसका एप्लीकेशन खाली करेंसी में नहीं है, मतलब ब्लॉकचेन अभी अगर आप पूछेंगे किसको भी तो वो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट वैसा नहीं है। तो जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी आपने अपने फाइनेंस मिनिस्टर से भी सुना है, गवर्नमेंट के बाकी सोर्सेस से भी सुना है कि ब्लॉकचेन में गवर्नमेंट इज वेरी बुलिश एंड गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करेगी। तो जो आपने अंडरलाइन टेक्नोलॉजी एंड ऑल डेवलप की है, यू कैन आप उसको दूसरे चैनल्स में, दूसरे बिजनेसेस में, दूसरे प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया वो टेक्नोलॉजी आज के दिन जीरो हो जाएगी। आपको खाली उसका फॉर्म बदलना पड़ेगा, आपको उसके एप्लीकेशन बदलना पड़ेगा, जो इवेंचुअली धीरे धीरे होगा। एंड गवर्नमेंट अगर आज बैन करेगी, हो सकता है गवर्नमेंट उसमें पीरियड देवे कि आपको अच्छा इतने टाइम में ये डेट से बैन है, तो आपको जो वैल्यू पे मिले आप उसके पहले एग्जिट करके आप अपना जो भी वैल्यू है रिकवर कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे ये फील्ड में।
जी, तो आपने ये कहा कुल मिला के अभिनंदन जी कि एक तो जो मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के खतरे हैं उसको देखते हुए बैन लगना चाहिए, दूसरी बात ये कि बैन लगाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर मामला है, दूसरे देशों के साथ भी ये इस तरह का एक ग्लोबल पॉलिसी अगर बने तभी इस तरह कंप्लीट बैन लग पाएगा, और तीसरी बात आपने कही कि टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर सरकार का रुख पॉजिटिव है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ जो दिक्कतें हैं उसको लेकर सरकार का रुख पहले से वही है कि ये इसको इलीगल करार दिया जाना चाहिए।
जी जी,
बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन जी आपका पूरी बात।
धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद।